समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोल्ड और यह है न्यूज मैगजीन आज सवेरे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज सवेरे के एक नए अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन आज सवेरे, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 2nd of February. So let's begin with the headlines first.
जी, अगर हम हेडलाइंस की बात करें तो कल बजट पेश किया गया, इससे जुड़ी तमाम खबरें हैं आज की हेडलाइंस में और साथ ही साथ दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरें हैं और साथ में महाकुंभ से भी जुड़ी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट को भारत की प्रगति के लिए परिवर्तनकारी बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से विकसित भारत की यात्रा को गति मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट कृत्रिम मेधा, खिलौना उत्पादन, कृषि क्षेत्र, फुटवेयर, खाद्य प्रसंस्करण और गिग अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि इससे बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट कृषि, ग्रामीण समृद्धि तथा शहरी विकास पर केंद्रित है और इसमें लगातार सुधारों पर जोर दिया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में भारत के विकसित स्वरूप की ओर बढ़ने के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं।
The Union Budget 2025-26 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman has received a positive response across various sectors, with businesses, industry experts, economists and the common people praising the government's proposals for tax relief to middle class, fostering innovation and promoting skill development. The Union Budget was tabled in the Lok Sabha by Finance Minister Sitharaman yesterday. In a major relief to the middle class, the Finance Minister announced income tax exemption for people earning up to 12 lakh rupees per annum. Adding the standard deduction of 75,000 rupees for salaried class, the income of 12,75,000 per annum will not be taxed. Ms. Sitharaman also introduced new income tax slabs, a new regime of taxation. Several other measures were announced to boost higher education, skill development and innovation. SBI Chairman C.S. Shetty said the Union Budget reaffirmed India as an innovation and knowledge-centric economy with a slew of reforms across agriculture, MSMEs, export, centricity, education and healthcare, and balancing skills and AI. Talking exclusively to Akashwani News, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI FICCI, President Harshvardhan Agrawal said the budget proposals will re-energize the economy by lifting the sentiments of the middle class and nudging the private sector to advance its investment plans as demand improves across sectors. Mr. Agrawal said that the continuation of the CAPEX is a good sign. The budget was also hailed by the economists in northeastern part of the country. Head of the Department of Economics in Assam Central University, Professor Ritik Majumdar, termed the budget as pro-middle class. Professor Majumdar also lauded the tax relief provided to lower income taxpayers. Leading automotive industry associations described Union budget as progressive and growth-oriented, with potential to boost vehicle sales through increased consumer spending and manufacturing support. The Automotive Component Manufacturers Association, ACMA, and Federation of Automobile Dealers Association, FADA, both emphasized the benefits of the budget focused on middle-class relief and rural prosperity and manufacturing sector support for the automotive sector. Gems and jewellery industry has welcomed the government's move to reduce the basic customs duty on platinum findings and slashing of jewellery duty in the Union Budget 2025-26. Common people also found the budget promising as it focuses on the middle class, employment, infrastructure, exports and tourism. Talking to Akashwani News, a working professional in the medical industry from New Delhi, Vivek said that the revised income tax slab will help the middle class.
Ji, aur rajnitik dalon ne bhi, tamam netaon ne bhi pratikriya di hai budget ko lekar ke. Ab chalte hain agli khabar ki taraf. Chhattisgarh ke Bijapur zile mein kal suraksha balon ke saath muthbhed mein 8 maowadi mare gaye. Police ke anusar zile ke Gangalur kshetra mein maowadiyon ke hone ka khufiya surag milne ke baad suraksha balon ki संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया. दोनों ओर से गोलीबारी के बाद घटनास्थल से 8 नक्सलियों के शव और राइफल तथा हथगोले बरामद किए गए हैं. अंतिम समाचार मिलने तक इलाके में तलाशी अभियान जारी है.
US President Donald Trump has imposed tariffs on imports from Mexico, Canada and China. President Trump signed 3 executive orders last night, issuing tariffs on the US top 3 trading partners. One executive order places 25% tariffs on goods from Mexico, while another installs 25% tariffs on goods from Canada and a 10% tariff on Canadian energy sources. A third executive order levies an additional 10% tariffs on imports from China. In a social media post, the US president said that he's taking the action in an effort to address the illegal flow of drugs and immigrants across the United States northern and southern borders. Earlier on Friday, White House Press Secretary Karoline Leavitt said that US will be levying tariffs on Mexico, Canada and China for allowing distribution of illegal fentanyl into US, which has killed tens of millions of Americans.
और अब खबरें खेल जगत से. सबसे पहले हॉकी जगत की खास खबरें हमारे संवाददाता मनोज सुना रहे हैं.
दिनांक 1 फरवरी को पुरुष हॉकी इंडिया लीग में सुरमा हॉकी क्लब और तमिलनाडु ड्रैगन्स खेल रहे थे तीसरे और चौथे स्थान के लिए. दिन का दूसरा मैच जो कि था पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का फाइनल मुकाबला, खिताब जीतने को आमने सामने थी श्राचिरार बंगाल टाइगर्स और हैदराबाद तूफान्स. दोनों इस लीग की बेहतरीन टीमें थी. गोंजालो पेट ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में दागा और हैदराबाद तूफान्स हो गए 1-0 से आगे. जुगराज सिंह ने श्राचिरार बंगाल टाइगर्स को 25वें मिनट में गोल करके 1-1 की बराबरी दिला दी. दूसरे हाफ में श्राचिरार बंगाल टाइगर्स ने मैच में वापसी की और 2 पेनल्टी कॉर्नर जिसे जुगराज सिंह ने गोल में डालकर गोलों की हैट्रिक भी हासिल की. हैदराबाद तूफान को भी इस हाफ में 3 पेनल्टी कॉर्नर प्राप्त हुए जिसमें से उन्होंने 1 गोल मारा और स्कोर हुआ 3-3. बंगाल टाइगर्स ने 2 पेनल्टी कॉर्नर में से 1 को सैम लेन ने गोल पोस्ट में डाल दिया और बंगाल टाइगर्स 4-3 से आगे हो गए और हुटर बजते ही बंगाल टाइगर्स ने मुकाबला 4-3 से जीता और इसके साथ पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब भी अपने नाम कर लिया. प्लेयर ऑफ द मैच रहे जुगराज सिंह. आकाशवाणी के लिए मैं मनोज यादव.
In the ICC Under-19 Women's T20 World Cup, defending champions India will take on South Africa in the summit clash this afternoon at the Beumas Oval in Kuala Lumpur, Malaysia. The match is scheduled to begin at 12 noon Indian Standard Time. India secured their spot in the final with a dominant 9-wicket victory over England in the semi-final on Friday. On the other hand, South Africa secured their maiden spot in the tournament's final after a thrilling 5-wicket win over Australia.
जी, भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच आज शाम मुंबई में खेला जाएगा. मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा और भारत पहले ही श्रृंखला 3-1 से जीत चुका है. सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने चौथा रोमांचक मैच 15 रन से जीता. T20 श्रृंखला के बाद दोनों टीमों के बीच 3 एक दिवसीय मैच खेले जाएंगे. पहला मैच 5 फरवरी को, दूसरा 9 फरवरी को और तीसरा 12 फरवरी को होगा. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पर न्यूज मैगजीन आज सवेरे. अब खबरें महाकुंभ से.
एक जिला एक उत्पाद स्थानीय कारीगरों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना है. केंद्र सरकार की इस पहल ने कई कारीगरों को प्रशिक्षण, संसाधन और बाजार की पहुंच प्रदान की है. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक कारीगर नितिन पाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के कारण उसका कारोबार बढ़ा है और लोग उसके उत्पाद को खरीद रहे हैं.
हमारा गन्ने का प्रोडक्ट है, पूरा ऑर्गेनिक तरीके से तैयार है. महाकुंभ मेले में दुकान लगाई है, दुकान पर भीड़ आती है, लोग देखते हैं हमारा प्रोडक्ट जो है उचित मात्रा में बिकता है और अच्छा रेट भी मिलता है।
वहीं कौशाम्बी के रहने वाले एक अन्य शिल्पकार ब्रजेश कुमार मिश्रा ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को उसके उत्पाद पसंद आ रहे हैं।
स्टॉल लगाए हुए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, केला चिप्स पत्तल दोना अच्छी बिक्री है यहाँ पर, रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है स्टॉल लगाने से।
एक जिला एक उत्पाद पहल देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
आकाशवाणी गोल्ड पर अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का, तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं अनीता के पास।
The Schizophrenia Research Foundation organized a 3-day event as part of its 40th year celebrations. The Mental Health Mela promotes mental well-being. Inaugurating the event, the additional chief secretary, Department of Health and Family Welfare, Supriya Sahu, said the idea is to bring all mental health organizations in the city under one roof. The event focuses on youth mental health and dementia. In the Mela, stalls showcase resources such as counseling booths, vocational skill training for those with mental illnesses, and information on government benefits and schemes. The Mela also has sensitization stalls on how the media should be reporting mental health, portrayal of mental health in movies, legal aspects and rights of individuals. The timings are from 11 a.m. to 7 p.m. and the event concludes today. The National Cadet Corps contingent comprising 127 students visited Combat Vehicles Research and Development Establishment, or CVRDE. This contingent recently participated in the Republic Day camp in New Delhi. The visiting students were welcomed and they were briefed about the progress of research and development technologies carried out at CVRDE in development of armored fighting vehicles for the Indian Army. The students showed keen interest to know and understand advanced technologies developed by CVRDE. Hampi Utsav, that celebrates the culture and heritage, will be held from February 28 to 2nd of March in Karnataka. The annual cultural extravaganza is held in Hampi, which was once the magnificent capital during the Vijayanagar Empire. Set against the stunning ruins of Hampi, the festival will feature a variety of cultural activities that include traditional music, dance and theatre performances. On the sidelines, rock climbing, rural sports, photography, exhibition with handicrafts display and local cuisine selling eats outs provides the audience with a rare experience. The Deputy Commissioner of Vijayanagar District, M.S. Divakar, solicited active participation from the local residents of Kamalpura and Malapanagudi towns as every year. He thanked the farmers for providing their agricultural fields for the festival venue, for the visitors to park their vehicles and also to create temporary facilities for the tourists. He welcomed the farmers and their families to come in large numbers to witness the festivities and various cultural programs. Union Minister for Coal and Mines and Telangana BJP President Kishan Reddy praised the Union Budget 2025-26, calling it a dream budget that strikes the right balance across all sections of society, with a special focus on the welfare of the poor, middle class and farmers. In a statement, Mr. Reddy highlighted the decision to increase the personal income tax bracket to 12 lakh rupees, calling it a significant move to benefit the middle class. And now for Metro City News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Devendra.
Ji. दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस बीच प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए पूरी क्षमता से प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर आरकेपुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजेंद्र नगर, चांदनी चौक और लक्ष्मीनगर में रैलियां करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में रैलियों में आम आदमी पार्टी सरकार पर शराब और जल बोर्ड घोटाले सहित हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सदर बाजार की एक जनसभा में दावा किया कि देश में घृणा और हिंसा तथा प्रेम और भाईचारे की विचारधाराओं के बीच संघर्ष है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने चांदनी चौक में रैली की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध न कर पाने के लिए अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। अरविंद केजरीवाल ने भी कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के स्कूलों, अस्पतालों और जनसेवाओं में सुधार किए जाने का उल्लेख किया। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए बुधवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इस बीच दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में घर से वोट डालने की सुविधा का बड़े उत्साह के साथ उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह सुविधा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए 4 फरवरी तक उपलब्ध है। दिल्ली नगर निगम ने भी मतदाताओं की सहायता के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य मतदाताओं को अपने अपने मतदान केंद्रों तक आसानी से पहुंचने में सहायता करना है। दिल्ली पुलिस चुनाव के मद्देनजर राजधानी में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में अब तक 1005 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने 436 गैर लाइसेंसी हथियार और 492 अवैध कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी के विभिन्न हिस्सों में विशेष छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल से अमृत उद्यान शीतकालीन वार्षिक संस्करण 2025 का उद्घाटन किया। अमृत उद्यान आम जनता के लिए अब खुल गया है, तो अगर आप राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में स्थित अमृत उद्यान को देखना चाहते हैं तो अब से लेकर 30 मार्च के बीच निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आप भ्रमण के लिए निकल सकते हैं। मुंबई का रुख करें तो नवी मुंबई नगर निगम का खेल और सांस्कृतिक प्रभाग विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों से वार्षिक खेल छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर रहा है। इनमें जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय, संबद्ध खेल संगठनों और सरकार द्वारा स्वीकृत टूर्नामेंट और अंतर विश्वविद्यालय कार्यक्रम शामिल हैं। छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन का उद्देश्य शहर को पहचान दिलाने वाले सफल युवा एथलीटों को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। आवेदन 20 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। और चलते हैं कोलकाता। कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के आम लोगों ने बजट का स्वागत किया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर शून्य किए जाने से राज्य के वेतनभोगी खुश हैं। काम करने वाले लोग उनके लिए जो घोषणाएं की गई हैं बजट में उससे खुश हैं। विभिन्न व्यापार और वाणिज्य निकायों ने भी बजट का स्वागत किया है क्योंकि आम आदमी के हाथ में अधिक पैसा होगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये बजट जनहितैषी नहीं है और इसमें रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं किया गया है। प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और जिलों में नए कैंसर उपचार केंद्र खोले जाएंगे। और श्रोताओं, अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। तो आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से ही तापमान बढ़ने लगा है और अनिता, आज भी सुबह का जो तापमान था वो 10 डिग्री के आसपास रहा, यानी कि ठंडी अब कम हो रही है और दिन में भी तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री ज्यादा है। जी, मुंबई में 31 और 19 के बीच तापमान रहेगा, 31 डिग्री दिन में और 19 डिग्री सुबह। आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, बारिश की संभावना नहीं है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा और भी बना हुआ है और दिन में आसमान साफ हो सकता है। तापमान 21 और 29 डिग्री के बीच दर्ज किया जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद का मौसम आप श्रोताओं को बताएं।
Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees and maximum will be around 32 degrees. In Bengaluru, fog and mist expected early morning. The minimum temperature was 19 degrees and maximum will be around 31 degrees Celsius. In Hyderabad, also fog and mist would occur in morning and later. It will be a partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 19 degrees and a maximum of 31 degrees सेल्सियस।
जी, और अब आगे बढ़ते हैं इतिहास में दर्ज आज की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने श्रोताओं के लिए। आज 2 फरवरी 2025 है।
टुडे इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे।
जी, वेटलैंड जिन्हें आर्द्र भूमि या झीलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दे आर द साइलेंट हीरोज ऑफ अ वाटर साइकिल।
जी, और ये दिन प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है।
दिस डे मार्क्स द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स That is in 1971 on this day in the Iranian city of Ramsar, ऑन द शोर्स ऑफ द कैस्पियन सी।
जी, वेटलैंड उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनमें या तो स्थायी या सीजन के अनुसार पानी भरा रहता है।
द थीम फॉर द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर।
जी, वेटलैंड धरती के सबसे समृद्ध इकोसिस्टम में से एक माने जाते हैं जो विविध प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों और प्राकृतिक चीजों के आवास प्रवास होते हैं और इसमें उनकी भूमिका विविधता को पोषित करती है।
दे कंट्रीब्यूट टू वाटर फिल्ट्रेशन सिंस वेटलैंड्स नेचुरली फिल्टर पोल्यूटेंट्स एंड इम्प्रूव वाटर फूड फ्लड कंट्रोल एज दे अब्सॉर्ब एक्सेस रेनफॉल एंड लाइवलीहुड मिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन वेटलैंड्स फॉर फिशिंग एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म।
जी, और अन्य घटनाओं की बात अगर करें तो 1814 में आज ही के दिन यानी 2 फरवरी के दिन कोलकाता, जिसे उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई थी।
इन 1848 द ट्रीटी ऑफ ग्वादालूप हिदाल्को वाज साइंड एंडिंग द मेक्सिकन अमेरिकन वॉर इन फेवर ऑफ द यूएस।
जी, हंगरी ने सोवियत संघ के साथ संबंध समाप्त कर लिए थे। वर्ष था 1939 का और दिन 2 फरवरी।
In 1943, the Battle of Stalingrad ends. The last German troops in the Soviet city of Stalingrad surrender to the Red Army, ending one of the pivotal battles of World War II.
जी, 1952 में मद्रास में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था।
And in 1990, ban on African National Congress lifted. South African President F.W.D. Clark lifted the 30-year ban on the African National Congress, resulting in the release from prison of Nelson Mandela and marking the beginning of the end of the apartheid.
जी, और 1990 से पीछे चलेंगे तो 1953 में अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन आज के दिन हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एवं रूस के राष्ट्रपति बोरिस यल्त्सिन ने शीत युद्ध समाप्त करने की घोषणा की थी। वर्ष था 1992। 1997 में चीन और अमेरिका के बीच वस्त्र व्यापार विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कर्नाटक की पहली लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था वर्ष 2008 में। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है और जिनके कार्यों से समाज प्रेरणा पाता है। इस क्रम में सबसे पहले स्मरण कर रहे हैं हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। शास्त्री जी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1960 में हुआ था। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित आचार्य चतुरसेन के उपन्यास रोचक और दिल को छूने वाले होते थे। आचार्य जी की प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो गोली, सोमनाथ, वयम रक्षामह और वैशाली की नगरवधु ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पाठकों का बहुत प्यार मिला और आज भी ये रचनाएं लोकप्रिय हैं। चतुरसेन शास्त्री ने उपन्यासों के अलावा लगभग 450 कहानियां भी लिखी और पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाई एक अच्छे और सुप्रसिद्ध रचनाकार के रूप में। और अब स्मरण प्रसिद्ध मराठी विश्वकोश के संपादक श्रीधर वेंकटेश केलकर का, जिनका जन्म 2 फरवरी 1884 को नागपुर में हुआ था। मराठी विश्वकोश को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 1914 में एक लिमिटेड कंपनी बनाकर नागपुर से ये कार्य प्रारंभ किया, परंतु संपादन व्यवस्था, मुद्रण, प्रकाशन और ग्राहक बनाने तक का सब काम स्वयं ही किया। 1914 में श्रीधर वेंकटेश केलकर ने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भाग लिया और भाषा के आधार पर प्रदेशों के निर्माण की मांग की। इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है आशावादी गांव सासू, गोंडवानातील, प्रेमवदा, परांगदा, ब्राह्मण कन्या, भटक्या और विचक्षणा आदि।
टुडे इज ऑल्सो द डेथ एनिवर्सरी बर्ट्रेंड आर्थर विलियम रसल। ही पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1970। द ब्रिटिश फिलोसोफर, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल। He had an influence on mathematics, logic, set history and various areas of analytic philosophy. He was one of the early 20th century's prominent logicians and a founder of analytic philosophy along with his predecessor Gottlob Frege, his friend and colleague G. Moore and his student and protege Ludwig Wittgenstein. Russell with Moore led the British revolt against idealism. Together with his former teacher A.N. Whitehead, Russell wrote Principia Mathematica, a milestone in the development of classical logic and major attempt to reduce the whole of mathematics to see logic. Russell's article on denoting has been considered a paradigm of philosophy. Russell was a pacifist who championed imperialism and chaired the India League. Russell was awarded the Nobel Prize in Literature in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought. He was also the recipient of Sylvester Medal, Kalinga Prize in 1957 and Jerusalem Prize in 1963.
जी, गोविंद शंकर कुरूप का भी की भी आज जयंती है. नायतोट केरल में इनका जन्म हुआ वर्ष 1901 में और 5 जून को. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे. उन्होंने कोचीन राज्य की पंडित परीक्षा पास करके अध्यापन की योग्यता पाई. उसके बाद 2 वर्षों तक वे यहां वहां अध्यापन कार्य करते रहे. महाकवि गोविंद शंकर कुरूप की 40 से अधिक मौलिक और अनुदित कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं. तो आज इनकी पुण्यतिथि है और आज ही के दिन इनका निधन हुआ था. पद्मभूषण और पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से सम्मानित सुप्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह का अब हम स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन 1915 में हुआ था. लोकप्रियता इन्हें पत्रकार के रूप में बहुत मिली. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा पद पर खुशवंत सिंह ने कार्य किया. खुशवंत सिंह ने कई अमूल्य रचनाएं अपने पाठकों को प्रदान की. वर्ष 1980 से 1986 तक वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे. इनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमन तथा सिखों का इतिहास आदि.
आफ्टर वर्किंग एज अ लॉयर इन लाहौर हाई कोर्ट फॉर 8 इयर्स, खुशवंत सिंह जॉइन द इंडियन फॉरेन सर्विस अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर इन 1947. ही वाज अपॉइंटेड द जर्नलिस्ट इन द ऑल इंडिया रेडियो in 1951 and then moved on to Department of Mass Comm of UNESCO in Paris in 1956. He served as the editor of several literary and news magazines as well as 2 newspapers through 1970s and 80s. And today is also the death anniversary of Eugene Karan Kelly, the American dancer, actor, singer, director and choreographer. I'm playing a snippet from The Gal and Me from one of his debut directorial films.
Ding dong, ding dong, do you hear the bells go ding dong? Do you know why they're ringing? Do you know why the birds are singing? Well, you're gonna get a big surprise, 'cause I'm gonna put you.
और अब बात उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक जीत सिंह नेगी की, जो ऐसे पहले लोक गायक थे जिनके गीतों का ग्रामोफोन रिकॉर्ड 1949 में जारी हुआ. इनका जन्म 2 फरवरी 1925 को हुआ था. जीत सिंह नेगी ने 2 हिंदी फिल्मों में भी बतौर सहायक निर्देशक काम किया. संगीतकार और रंगकर्मी भी थे. वो पहले ऐसे गढ़वाली लोक गायक भी थे जिनके गीतों का आकाशवाणी से प्रसारण हुआ. और जाने माने चरित्र और फिल्म अभिनेता रमेश देव को भी हम याद कर रहे हैं. इस चरित्र कलाकार की आज पुण्यतिथि है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 30 जनवरी 1929 को जन्मे रमेश देव का परिवार मूल रूप से जोधपुर का रहने वाला था. इनके दादा और परदादा इंजीनियर थे जिन्होंने जोधपुर महल के निर्माण में अपनी भूमिकाएं निभाई. इसके बाद छत्रपति साहू महाराज ने कोल्हापुर नगर के निर्माण के लिए उन्हें कोल्हापुर बुलाया. इनके पिता कोल्हापुर में न्यायाधीश रहे. इसे कहते हैं नियति जो आपको जहां जाना है उसके लिए रास्ते बना ही देती है. रमेश देव ने फिल्म आरती से हिंदी सिनेमा में करियर की शुरुआत की और कई फिल्मों में बतौर सहायक कलाकार अपनी भूमिकाएं निभाते रहे.
टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ शकीरा, द कोलंबियन सिंगर सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन एंड डांसर हु बिल्ट अ सक्सेसफुल करियर इन बोथ इंग्लिश एंड स्पैनिश स्पीकिंग मार्केट्स टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैटिन अमेरिकन रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ऑफ अर्ली 21st सेंचुरी. आई एम प्लेइंग अ सॉन्ग संग बाय हर, अ ब्लॉकबस्टर, व्हेनेवर वेयरएवर.
श्रोताओं, अनुशासन कठिन लगता है पर यदि ये आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है. ये है आज का विचार और मुझे लगता है आप सभी भी इससे सहमत होंगे। तो अनुशासन का जो कह सकते हैं अनुशासन को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आदत में शामिल कर लेना चाहिए ताकि हमें सफलता की तरफ पहुंचने में कोई रोक न सके, कोई बाधा न बन सके। और अब समय हो रहा है कि आपसे हम ले लें विदा, ये न्यूज मैगजीन समाप्त करने के लिए, आज सवेरे समाप्त करने के लिए, लेकिन आप बने रहिए लगातार आकाशवाणी गोल्ड के साथ।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।